हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जी। प्यारे प्रिया उज्जैन इस्कान श्री श्री राधा मदन मोहन भक्तवृंद, उत्साह के साथ वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव के अंतर्गत भगवान जब मुख्य मंदिर से निकल के गुंडीचा मंदिर में 7 दिवस के लिए आते हैं, वो मौसी के घर आते हैं, ऐसे वहाँ कहते आपके वहाँ पंडाल बनाया करते थे किसी अच्छे जगह में, उद्यान में। सो इस साल हम अपने मंदिर में बैठकर ही वृंदावन से आपके साथ जगन्नाथ कथा का श्रवण वर्णन का ये उत्सव मेला मना रहे हैं। सो आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसे पहले दिन से हमने जगन्नाथ अष्टक के श्लोक से शुभारंभ करने का नियम बनाया है, आज का श्लोक पढ़ रहे हैं, चौथा श्लोक और पांचवा दो पढ़ लेते हैं। कृपा पारावरस जल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फोरद अमल पंकेरुमुख सुरेन्द्र राध्या श्रुति गण सिख गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुमे रथारूढ़ो गचन पति भूदेव पटलई स्तोति पारा दुर्भावं प्रतिपदं उपकरण्य सदया दया सिंधो बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे। कृपा पारावर सजल जल श्रेणी रुचिरो, जिसकी कृपा का कोई आर पार नहीं है, जो दया का सागर है, और जिसका रूप जलधर पानी से भरे हुए सुंदर बादलों के समान श्याम सुंदर है। रुचिर का मतलब सुंदर, और बादल कहते हैं श्याम को, श्याम सुंदर जिसका स्वरूप है। रमावाणी राम, रमा रमा तो लक्ष्मी है, और वाणी वाणी की देवी सरस्वती है। राम उसको आनंद देते हैं। रमावाणी राम स्पोर द अमलस, और कैसे उनको सुख देते हैं कि जिनका मुख कमल सदा ही मुस्कुराता रहता है। मुख कमल स्फुरद अमल पंकेरु मुख, पंक पंक वैसे पंक कहते हैं कीचड़ को, जिस कीचड़ में जन्म लेता है वो पंकज कहलाता है, पंक में जन्म लेने वाला पंकज, और वो पंकज कमल, और भगवान का मुख कमल। और ऐसा ये मुख कमल है जो लक्ष्मी जी को और सरस्वती को आनंद देता है। सुरेंद्र आराध्य सुरेंद्र, सुर देवता को कहते हैं, इंद्र देवताओं का राजा, इंद्र आदि सारे सुरेंद्र आराध्य जिसकी आराधना करते हैं। कैसे आराधना करते हैं? श्रुति श्रुते गाना सिखा गीत चरी, तो श्रुति कहते हैं वेद को, उपनिषदों के मधुर श्लोकों से गीत गाकर स्तुति करके भगवान की महिमा गाते हैं। ऐसा भगवान जगन्नाथ हमारे आंखों के सामने साक्षात प्रकट होके दर्शन देके हमारे जीवन को सफल करें, ये है जगन्नाथ जी की महिमा। जो मंदिर से बाहर निकलकर जो मंदिर में जाने में समर्थ नहीं है उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। आज ये कथा करेंगे कि भगवान का ये रूप ऐसे क्यों है, ये रूप अति दया का रूप है। तो आइए दूसरे श्लोक का पाठ करते हैं। रथारूढ़ो, रथ आरूढ़, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर चढ़ के अपने रतन बेड़ी के सिंहासन से उतर के रथ के ऊपर आरूढ़ होकर चढ़कर गछन पथि मेले तभो देव पटलई। ब्राह्मण भूदेव, ऐसे ब्राह्मण को कहते हैं, वो भूदेव है। भूपाल क्षत्रिय को कहते हैं। ये जो भूदेव हैं ये भगवान की प्रेम पूर्वक स्तुति करते हुए चलते हैं। आज भी जगन्नाथपुरी में हीरा पंचमी का दिन मनाया जाता है। पांचवें दिन रथ यात्रा के लक्ष्मी मुख्य मंदिर से पालकी में अपने सेवकों के साथ नीलाचल में कैसे जाती है हीरा पंचमी के दिन, तब भी ब्राह्मण उसके साथ उसके भावों का गान करते हुए जाते हैं। और जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है तब भी विशेष उनकी अपनी भाषा में भगवान जगन्नाथ का ब्राह्मण गुणगान करते हैं। उस क्षेत्र में निरंतर भगवान के गुणगान का पाठ चलता रहता है। तो जब कोई भगवान की प्रार्थना ब्राह्मण करते हैं, इतने सुंदर गुणगान करते हैं, तो उसका भगवान उत्तर कैसे देते हैं। स्तोते प्रादुर्भावं प्रतिपदं उपकरण्य सदयः। भगवान जब उनके सुंदर उत्तम श्लोक वेदों की वाणी ब्राह्मण के मुख से भूपतियों के मुख के सुनते हैं, भूपालों के मुख से, भूदेवों के मुख से, तब बड़े आनंद में उसको सुनते हैं। करणीय, करणीय का मतलब सोपकरणीय, सुनना है। सदय दया सिंधो, तब उनके ऊपर दया की दृष्टि डालते हैं। कैसा ये भगवान का स्वरूप है जिसके आंखों के ऊपर पलकें भी नहीं है, सदा ही खुली रही है कृपा, उनकी आंखों से बरसती रहती है। ब्रह्मा जी को गोपियों ने उल्हाना दे दिया है, बड़ा अपने आप को सृष्टिकर्ता मानते हो, दो आंखें एक तो बनाई और उसके ऊपर पलकें रख दी जो बार बार झपकती रहती है। श्री कृष्ण के सुंदर मुख को देखने के लिए एक आंख तो हम निंदकों के ऊपर रखते हैं, कहीं हमारे को देख न लें कि हम कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, तो एक तो निंदकों के, आधी आंख हम अपने घर वाले परिवार वाले सुसास सुसरपति के ऊपर रखते हैं, कहीं वो तो नहीं देख रहे हैं। आधी आंख से थोड़ा ऐसे कृष्ण को देखते हैं और दर्शन होता है, तब तक पलक ऊपर गिरती है। आप तो ब्रह्मा जी मूर्ख नंबर पहले के हो, आपको आंख बनाना नहीं आई। आंखों का उत्सव कृष्ण को देखना, उसके लिए दो ही आंखें बनाई। जैसे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये कृष्ण दो इतने मधुर, इन दो शब्दों में इतना अमृत है कि दो कान इसके सुनने के लिए पर्याप्त नहीं है, कोटि कोटि कान भगवान दे दो और करोड़ों जबान दे दो, नहीं तो इसका आनंद कैसे लेंगे। और ये पृथु महाराज भागवत में कहते हैं कि भगवान आपकी महिमा सुनने के लिए दो कान कहां पूरे पड़ेंगे, हजारों कान, लाखों कान, करोड़ों कान चाहिए। ये है प्रेमी भक्तों का भाव। सो ब्राह्मण जब गाते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं तो बड़ा आनंद। दया सिंधु बंधु सकल जगताम, सारे जगत का बंधु है भगवान। भगवान हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, भले नालायक हैं परंतु वो हमको नहीं छोड़ता। हम उसको भूल जाते हैं, वो हमको कभी नहीं भूलता और हमारे पालन पोषण के लिए लिखा है सिंधु सुतया। सिंधु सुतया की परिभाषा है समुद्र से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी, जिसके द्वारा जगत का पालन करता है। हम सबका पालन कैसे होता है, लक्ष्मी के द्वारा होता है। वो माता है, वो समुद्र से उत्पन्न हुई है, समुद्र से उत्पन्न हुई है। और ये आप सब जानते हैं समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत में। 14 रत्नों में 3 मुख्य रत्न है। खीर सागर का मंथन देवता और असुरों ने किया, एक ही जगह पे दोनों ने काम किया, परंतु देवताओं को अमृत मिला और असुरों को कुछ नहीं मिला। 3 मुख्य रत्न, 14 सब मिलाकर 14 रत्न निकले, 3 मुख्य रत्न है। पहला लक्ष्मी जो सारे जगत का पालन करती है, जगताम बंधु, भगवान जगत का बंधु है। बंधु का मतलब है मित्र, बंधु का मतलब है संबंधी। हमारा और भगवान का नित्य संबंध है। हम भूल गए हैं इसलिए भटक रहे हैं, परंतु भगवान नहीं भूले हैं। लक्ष्मी के द्वारा हम सबका पालन पोषण कर रहे हैं। एक बार लक्ष्मी नारायण से कहती है, मैं हूं जिसके द्वारा आप अपने सारे संतान का पालन पोषण कराती हैं, मैं माता जगत की। भगवान ने कहा, आप ही पालन पोषण करती हैं लेकिन स्वामी तो मैं हूं। मेरे कृपा से, मैं कृपा का सागर हूं और आपके द्वारा सबका पालन करते हूं। तो लक्ष्मी देव को उस दिन लीला देखनी थी। एक डिबिया लाई, एक चुनटी को उसमें डाला और ऐसे नारायण के आंखों के सामने रखा, देखो इस डिबिया को बंद करता हूं, अब इसको दाना खिला के दिखाओ। डिबिया बंद हो गई। लक्ष्मी ने कहा, अंदर कौन खिलाएगा चिड़िया और इस चुनटी को। दूसरे दिन डिबिया को खोल के देखें तो एक चावल का दाना पड़ा है और खा रही है चुनटी। लक्ष्मी पूछती, ये चावल का दाना अंदर कैसे चला गया। नारायण ने मुस्कुरा के कहा, जब आपने मुझे डिबिया दिखाई तो मेरे माथे के तिलक में चावल पड़ा था, वो गिरा और इसको मिल गया। तो भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, परंतु लक्ष्मी मुख्य रत्न। अब समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है ये कोई मुख्य बात नहीं है। लक्ष्मी तो नित्य भगवान की, नारायण की प्रियसी। और एक लक्ष्मी नहीं है, सहस्र लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां हैं, हजारों वैकुंठ हैं। ये सारी लक्ष्मियां राधा रानी का विस्तार है। प्रभुपाद ने एक बार चिट्ठी लिखी थी कलकत्ता से और उसके बाद भुवनेश्वर ही जा रहे थे। भुवनेश्वर भी अपने भुवनेश्वर मंदिर के ही अंदर कुछ समय रहे थे, जिस कुटिया के अंदर परम पूज्य श्रीपाद गौर गोविंद स्वामी महाराज के निमंत्रण के ऊपर, तब तो जंगल था। तब एक चिट्ठी लिखी थी सारे मंदिरों को, क्योंकि कुंभ मेला इलाहाबाद से प्रभुपाद जी 77 में निकले तो प्रसाद की व्यवस्था स्नान के दिन पे नहीं थी, तो बहुत दुखी हुए। घंटा भर सब भक्तों को कहा, अमृत के पान करने का स्नान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारे को नाम अमृत को वितरण करना है और हमारे को हरि नाम अमृत। इसी प्रयागराज में भक्ति रसामृत सिंधु श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दिया। आप एक बिंदु गिरा है अमृत का, उसमें स्नान करते हो, हमारे पास तो सिंधु है, भक्ति रस अमृत सिंधु है। आप नाम अमृत का वितरण करो, आप प्रसाद अमृत का वितरण करो, और आप भगवत साहित्य के पुस्तकों का वितरण करो। प्रसाद नहीं हुआ, प्रभुपाद के मन में असंतुष्टि थी। कलकत्ता पहुंचे तो चिट्ठी लिखाई सब मंदिरों को कि हमारे मंदिर में आने वाला अतिथि दर्शनार्थी यात्री जब मंदिर में आए तो हमारे मंदिर में उनके लिए उत्तम भगवत प्रसाद तैयार होना चाहिए, और प्रसाद का चावल होना चाहिए, दाल होना चाहिए, पूरी होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, हलवा होना चाहिए, पकोड़ा होना चाहिए, खीर होना चाहिए, ऐसे नाम लिखिए, चिट्ठी आप देख सकते हैं। फिर श्री प्रभुपाद ने लिखा 25-50 लोग आए तो उनको प्रेम से बिठा के खिलाएं, और जैसे प्रसाद दो और प्रसाद की आवश्यकता हो तो इतने आदमी को तैयार करके रख दो। हमारे मंदिर से भगवान के यात्री, हम सेवक हैं, भगवान के घर में आते हैं, कोई बिना प्रसाद पाए नहीं जाना चाहिए। आप मध्व संप्रदाय का जो मुख्य मंदिर है उड़पी में, उसमें अक्षय पात्र है, उसमें लाखों लोग रोज भी आए तो सबको फ्री में प्रसाद खिलाया जाता है, चावल और रसम तो सबको मिलेगा ही, कभी उसमें कमी नहीं होती। तिरुपति के मंदिर में प्रसाद वितरण सबके लिए। तो प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे कि हमारे मंदिर में आने वाले हर यात्री को प्रसाद मिलना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने लिखा ये कभी मत समझना कि तुम खिला रहे हो, रसोई घर की स्वामिनी राधा रानी है, और राधा रानी की सेवा में सहस्र लक्ष्मियां सदा तैयार रहती हैं, कभी कमी नहीं होगी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आज भी जो हमारे मंदिरों में आते हैं दर्शन करने, दर्शन यात्री, दो बातों की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं, सायन की आरती, गौर आरती में कीर्तन, और गर्म खिचड़ी का प्रसाद, पर्याप्त मात्रा में प्रसाद का वितरण होता है। सो लक्ष्मी एक रतन, दूसरा रतन सुरभि गाय कामधेनु, जो ऋषियों को दी गई, जिससे भगवान की पूजा आरती के लिए घी, यज्ञ के लिए घी, और प्रसाद के लिए घी, दूध, दही, खीर, मलाई, पनीर, सब पर्याप्त मात्रा में भगवान को भोग लग के भक्तों को मिले, और तीसरा अमृत जो देवताओं को प्राप्त हुआ। उस अमृत की एक बूंद आपके उज्जैन में शिप्रा में भी गिरी, इसलिए 12 वर्षों में कुंभ मेला लगता है। दो कुंभ मेलों में, वैसे तो 3 कुंभ मेले मैं समझता हूँ इस्कान ने किए हैं उज्जैन में, पहले में तो हमको हमारा उसमें सेवा नहीं थी, दर्शन नहीं हुए, परंतु 2 तो हम रहे के वहाँ देखे हैं, और गत कुंभ मेला में प्रसाद के लिए इस्कान उज्जैन मंदिर की ओर से पर्याप्त मात्रा में अन्न दिया गया, चावल दिया गया, और भंडारा 24 घंटे सबके लिए खुला पड़ा था, ये आप जानते हैं। और प्रायः हमारे जितने भी कुंभ मेला के कार्य होते हैं, मंदिर होते हैं, उसमें प्रसाद के वितरण में कभी कोई कमी नहीं होती। सोसिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। सो आज हम आपके साथ ये चर्चा करने वाले हैं कि आज हीरा पंचमी है। वैसे हीरा या होरा का अर्थ है देखना, किसी को देखने जाना। हेरी बो अमी वृंदावन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते भक्तों के संग में हेरी बो का मतलब देखेंगे, और इसका मतलब देखने जाती है कौन कौन से दिन, पंचमी के दिन, आज पंचमी का दिन है, और पंचमी के दिन लक्ष्मी को भगवान जगन्नाथ कह के जाते हैं मैं मौसी के घर से होके आ रहा हूं, ऐसे वृंदावन है वो, जाता हूं मैं मिलके आता हूं, अकेला नहीं जा रहा हूं, वो भाई बहन दोनों साथ जा रहे हैं, सुभद्रा और बलदेव जा रहे हैं मेरे साथ, मैं कल आ जाऊंगा। रथ यात्रा होती है, भगवान गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं, वो तो वृंदावन है। गुंडीचा मंदिर को सुंदराचल कहते हैं और मुख्य मंदिर का नाम है नीलाचल। तो सुंदराचल गुंडीचा तो महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था, उसी के नाम से वो मंदिर बना है। सो पांचवें दिन लक्ष्मी इंतजार करती है, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, अभी नहीं आए मेरे नाथ। तो लक्ष्मी को पालकी में उठाकर उसके पालकी उठाने वाले ब्राह्मण, उसके सेवक, उसकी जो उत्सव मूर्ति को लेकर वहां से बड़े मंदिर से, बड़ा मंदिर जो मुख्य भगवान जगन्नाथ मंदिर के सीधे हाथ के कोने में लक्ष्मी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां से ये पूरी सवारी चल के जगन्नाथ के रथ के सामने आके खड़ी होंगी। वहां फिर पंडित जगन्नाथ जी के आरती उतारेंगे, फिर जगन्नाथ जी की माला लक्ष्मी देवी को पहनाई जाएगी, फिर लक्ष्मी देवी ही अंदर जगन्नाथ जी के वहां जाएगी, और फिर दूसरे एक विशेष दरवाजे से बाहर निकल के आएगी, फिर रथ के पास पास आकर क्रोध करेगी, थोड़ा रथ का टुकड़ा तोड़ेगी, जगन्नाथ के रथ को थोड़ा सा खंडित करेगी। और कहते हैं भगवान जगन्नाथ के सेवक जो जो ग्वाल बाल हैं कृष्ण के, उनको पीटेगी कि आप क्यों यहां लाए हो, और फिर वहां से पालकी दर्शन करके वापस जाएगी। और जब जगन्नाथ वापस वहां जाएंगे तो दरवाजा बंद कर देगी, खोलेगी नहीं, घर में आने नहीं देगी। ये बहुत बड़ी एक सुंदर पहीरा पंचमी की, हीरा का मतलब दर्शन, पंचमी के दिन जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लक्ष्मी मुख्य मंदिर से निकल के गुंडीचा मंदिर आती है। परंतु आप आज भी जानते हैं कि ब्रज में लक्ष्मी है, हमारा वृंदावन में जहां मंदिर है अपना कृष्ण बलराम, इसके पीछे जमुना जी है, और जमुना जी के दूसरे तट पे लक्ष्मी जी का मंदिर है बेलवन में। बेलवन में लक्ष्मी आज भी तपस्या कर रही है, उसको श्री कृष्ण के रास में प्रवेश नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिला, क्योंकि रास में प्रवेश होने के लिए गोपी का अनुगत होना पड़ेगा, गोपी के पीछे चलना पड़ेगा, और वो तो महारानी लक्ष्मी वैकुंठ की स्वामिनी है, भगवान के वक्ष स्थल पे विराजमान रहती है, वो गोपी गोबर उठाने वाले के पीछे कैसे चले। इसलिए आज तक रास में प्रवेश नहीं कर पाई है और बेलवन में तपस्या कर रही है। सो जगन्नाथ जी का ये रूप जो हम देखते हैं ये कैसे हुआ, आज इसकी इसका रस आस्वादन करेंगे और एक जगन्नाथ जी के भक्त की कथा करेंगे। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का रूप ऐसा क्यों है जिसको देखने से आंखें बंद नहीं है, हाथ में उंगलियां नहीं है, नीचे पांव तो है ही नहीं। ये भगवान जगन्नाथ का महाभाव प्रकाश स्वरूप है, जिसमें आंखें खुली की खुली रह गई, हाथ और पांव शरीर में कछुए की तरह चले गए, और ब्रज के भक्तों के प्रेम में इतने निमग्न हो गए कि सब कुछ शरीर की शुद्ध बुद्ध चली गई। महाभाव प्रकाश का स्वरूप है। ऐसे लिखा है कि इंद्रद्युम्न महाराज को नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि अब नील माधव यहां तीन लकड़ी के बड़े बड़े लाग आएंगे समुद्र में, और फिर आपके पास एक बूढ़ा ब्राह्मण के रूप में स्वयं भगवान ही। लकड़ी का काम करने वाले अपने सारे उपकरणों के साथ पधारेगा और वो इसमें से भगवान के विग्रह का निर्माण करेगा। और आया ब्राह्मण, कहा 21 दिन लगेंगे मुझे भगवान के स्वरूप को, विग्रह को प्रकट करने में, तब तक कोई अंदर देखने नहीं आएगा, अगर कोई आ गया तो मैं चला जाऊंगा, जहां जितना बना है उतना ही बना होगा, आगे नहीं बनेगा। महाराज ने कहा यही तो हमको ब्रह्मा जी ने कहा था, आप काम शुरू कीजिए। उसने काम शुरू कर दिया। 10-15 दिन हो गए, 21 में से 15 दिन हो गए। गुंडीचा रानी कहती है अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा है, वो बूढ़ा कुछ खाया नहीं है, ऐसा तो नहीं है उसका प्राण नहीं रहा हो, काम आधा रह गया हो। महाराज ने कहा उसने मना किया है। इंद्रदिन महाराज कहते हैं महीना अंदर नहीं जाएंगे। उसने कहा 21 दिन से पहले नहीं है। और गुंडीचा ने कहा नहीं, अगर वो जीवित नहीं है तो हमारे ऊपर तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, हमारी सेवा के लिए गया है। तो रानी के कहने के ऊपर दरवाजा खोल के अंदर गए तो ब्राह्मण अदृश्य हो गया। और इस हालत में जो आज हम देख रहे हैं, ऐसे बने बनाए 3 मूर्तियां और चौथा सुदर्शन चक्र। अब तो महाराज इंद्रद्युम्न कहने लगे अरे ठाकुर जी का तो विग्रह पूरा नहीं हुआ। उस वक्त आकाशवाणी हुई कि ये परिपूर्ण विग्रह है, ये महाभाव स्वरूप का विग्रह है। इस विग्रह के, इस धरती के ऊपर दर्शन की अभिलाषा और इच्छा नारद ऋषि ने की थी, जो आपके साथ आया है। आप इसकी स्थापना कराने के लिए ब्रह्मा जी को कहिए कि यज्ञ करे और इसकी स्थापना करे। तो वैष्णव का मत यह है कि ऐसे रूप को बनाने के बाद भगवान क्यों चले गए, गुंडीचा के हृदय में दरवाजा खोलने की प्रेरणा क्यों की। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि ये द्वारका में एक लीला हुई थी जिसमें नारद को भगवान ने वचन दिया था इस रूप में धरती के ऊपर प्रकट होके कली काल के लोगों का कल्याण करेंगे। वो कथा इस तरह है कि भगवान श्री कृष्ण, रसराज कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वृंदावन बिहारी कृष्ण चले तो गए द्वारका, बन तो गए द्वारकाधीश। 16,108 महलों में सुंदर राजकुमारियों के साथ विवाह हुआ, पटरानियां हो गई, साक्षात लक्ष्मी देवी रुक्मणी के रूप में प्रथम पटरानी हुई, जामवती सत्व सत्यभामा दो फिर, और फिर कालिंदी जमुना, फिर सत्या सैव्या नागंजिति, और अवंती का आपका उज्जैन भगवान श्री कृष्ण का ससुराल भी है। मित्राविंदा अवंतिका नगरी की राजकुमारी से भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया। तो आप उज्जैनवासी भगवान के ससुराल में रह रहे हो और ससुराल वाले भगवान को बहुत प्रिय हैं। सो एक और बाकी 16,100 तो भूमासुर के कैद से भगवान ने मुक्त कराई, तो जब समाज में कोई नहीं उनको स्वीकार कर रहा था, श्री कृष्ण ने उस काल के अंदर क्रांति करके सबको द्वारका की पटरानी का सौभाग्य प्राप्त कराया। और इतने सारे सेवा करने वाले, फिर भी कृष्ण रात को सोए सोए नींद में कहे राधे गोपी राधे गोपी राधे गोपी। बड़ा आश्चर्य लगा सब रानियों को कि हम इतनी सेवा करने वाली इतना प्रेम से इसकी सेवा कर रहे हैं। और ये सोया सोया राधे गोपी कहता है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु भी गोपी गोपी जब कहते थे तो सब बड़े पंडित विद्वान कहते थे ये क्या हो गया निमाई पंडित को, गोपियों की बात करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब तो संन्यास लेना अति आवश्यक हो गया, नहीं तो ये लोग सम्मान हमारा नहीं करेंगे और फिर इनका अपराध हो जाएगा, इनका उद्धार कैसे होगा, मैं तो जगत के उद्धार के लिए आया हूं। सन्यासी का सब सम्मान करते हैं। तो गोपी गोपी तो चैतन्य महाप्रभु के मुख से भी निकलता था। ये राधा रानी कृष्ण के गृह में है, कृष्ण ही है, तो वही तो कृष्ण वहां स्वयं स्वयं गोपी गोपी कहता था। रानियों ने कहा ब्रज में ऐसा क्या श्री कृष्ण को सुख मिला ब्रजवासियों से कि आज 100 साल होने को आए हैं परंतु भूला नहीं है, एक क्षण नहीं भूला। किससे पूछें? कहा माता रोहिणी, बलराम की माता, रोहिणी नंदन जय बलराम। वो तो ब्रज में रही है, सारी ब्रज की लीलाओं की साक्षी है। रानियां गई, कहा मां, हे मां रोहिणी, हमारे को बहुत इच्छा है ब्रज की श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने की। वो ब्रज को भूल नहीं पाया है और हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसके ब्रज के बारे में जानना चाहती हैं। वैसे जो भगवान का श्री विग्रह श्रीपाद माधव आचार्य के वहां मंथनी हाथ में पकड़े हुए गोपाल हैं, वो श्री कृष्ण है, बाल रूप में हाथ में मंथनी पकड़ी, मंथनी का मतलब दही मंथन करने वाली लकड़ी पकड़ी हुई है। ये जो उड़पी कृष्ण है ये रुक्मणी के महल में, ये विग्रह रुक्मणी के द्वारा पूजित था। काल अंतर में ये विग्रह गोपी चंद जो गोपी तालाब से जाता है उसके साथ जाते हुए समुद्र के किनारे उड़पी में नाव फंस गई। व्यापारी की सहायता करने के लिए मध्व आचार्य ने नाव को निकाला तो उसको भेंट के रूप में वो गोपीचंद दिया जिसके अंदर से ये उड़पी गोपाल प्रकट हुए। तो जब सारे भगवान की महारानियों ने रुक्मणी देवी को, सारी रोहिणी देवी को जब प्रार्थना की तो कहा कि ब्रज की लीला तो हमारे हृदय पे सारे की सारी टेलीविजन की तरह चलती है, मैं वो कथा बताना शुरू करेंगी तो कृष्ण बलराम वो कथा सुनेंगे तो बड़ी समस्या हो गई, वो ब्रज जाने के लिए आतुर हो जाएंगे, फिर रोके नहीं जाएंगे। सबने कहा फिर तब आप मैया कथा सुनाइए जब कृष्ण बलराम यहां नहीं हो, और हम एक जगह बैठेंगे और दरवाजा बंद कर देंगे, दरवाजे के ऊपर चौकीदार खड़ा कर देंगे, कोई अंदर आने नहीं देगा उनको, अब हमको कथा बताइए। कृष्ण बलराम सुधर्मा सभा में गए, जो सुधर्मा सभा विश्वकर्मा ने द्वारका में विशेष स्वर्ग से लाके बनाई थी। अब सारी रानियां इकट्ठी होकर रोहिणी को कहा ब्रज की कथा बताइए, तब सुभद्रा को यह सेवा दी गई दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, दोनों हाथ लंबे करके किसी को अंदर नहीं आने देना, विशेष रूप से कृष्ण बलराम को तो के ऊपर प्रवेश निषेध है। और रोहिणी देवी ने कृष्ण कथा शुरू करी, ब्रज की कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू की, गौचारण लीलाएं शुरू की, माखन चोरी की लीलाएं शुरू की, और गोपियों के संग कृष्ण के जो मधुर मधुर लीलाएं हैं उनका वर्णन करने, गोवर्धन लीला का वर्णन। ये लीलाएं इतनी आकर्षक थी कि सुभद्रा सुनती सुनती वहां तलीन हो गई और श्री कृष्ण और बलराम सुधर्मा सभा में रुक नहीं पाए, क्योंकि ये तो भगवान का वचन है नारद को दिया हुआ। यत्र गायन्ति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, नारद जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरी कथा कीर्तन करते हैं वहां मैं तो उपस्थित हो जाता हूं। आज भगवान ने कहा मेरी मां रोहिणी मेरा ही कीर्तन कर रही है, मेरा गुणगान कर रही है, और मैं सुधर्मा सभा में बैठा रहा हूं तो लोग कहेंगे माता के कीर्तन में नहीं गया तो हमारे कीर्तन में कहां से आएगा। जाना तो चाहिए। भागते हुए दोनों भैया आए, लेकिन सुभद्रा के हाथ तो लंबे थे, नहीं जा सकते हो भैया, इतना पता भी नहीं लगा, और वो भी दोनों ऐसे कान दे के सुनने लगे। ब्रजवासियों के प्रेम को रोहिणी के मुख से अमृत की धारा की तरह प्रवाहित सुनते सुनते एक तरफ जगन्नाथ जी खड़े थे, कृष्ण खड़े थे सुभद्रा के लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में खड़े थे बलराम। दोनों तीनों की आंखें खुली रह गई, हाथ शरीर में चले गए और पांव ऐसे महाभाव में ब्रजवासियों को साक्षात देखें कि कैसे विरेक में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई। उस वक्त नारद जी वहां पधारे। नारद जी ने कहा मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। तब तक तो वो भी सावधान हो गए, अंदर से कथा भी बंद हो गई, कृष्ण बलराम आ गए। तो अब नारद जी कहता है मैंने भगवान आपके सारे अवतार देखे हैं, सारे रूप देखे हैं, ये आपका रूप अति अद्भुत था और ये महाभाव प्रकाश का रूप था जो आपके भक्तों की कथा से प्रभावित होने वाला था। ये भक्तों के विरह में आपको कितना भक्तों के प्रति स्नेह है उसका सूचक ये रूप है। इस रूप को आप धरती के ऊपर प्रकाशित करके धरती का उद्धार करें। नारद जी को भगवान ने कहा तथास्तु, हम पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, संख क्षेत्र में इस रूप में पूजे जाएंगे, और ये रूप का जो दर्शन करेगा जिस नीलांचल पर्वत के ऊपर जो अक्षय वट वृक्ष है उसके पास में जो रोहिणी कुंड है, जो वहां स्नान करे उसका दर्शन करे और इस हमारे स्वरूप का दर्शन करने वाला और वहां रहने वाला पुरुषोत्तम क्षेत्र में मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मेरे नाम से उस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहेंगे और वहां रहने वाला मेरे धाम जाएगा वापस, कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएगा। सो ये रूप इस प्रकार से इंद्रद्युम्न महाराज के पास इतना ही भगवान ने अपने तरफ से बनाया नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए, द्वारका की लीला को प्रकाशित किया जगन्नाथपुरी। धर्मराज यमराज संयमपुरी से उतर के चले आए जगन्नाथपुरी में, बोला भगवान आपने यहाँ अपने आप को ऐसे प्रकाशित कर दिया है, अब जो आपका यहाँ दर्शन करेगा वो तो सब भगवत धाम चले जाएगा, मेरी नौकरी खत्म, मैं क्या करूँगा चला के, कोई बचेगा नहीं, नरक में किसको दंड दूंगा। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने लक्ष्मी को कहा कि इसको उत्तर दीजिए। लक्ष्मी ने कहा नारायण ने इस क्षेत्र में रहने वालों को तो अपने धाम जाने का वरदान दिया है, भगवान का दर्शन करने वाला कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में तो आएगा नहीं पुरुषोत्तम क्षेत्र में, और कल प्रसाद की महिमा तो सुनी है कि यहां का प्रसाद खाने वाला भी भगवत धाम जाएगा, आप यहां रहने वाले आपके गई कौन ने रोज एट हुए जो ओ जो ओ ओ अलग ना बंद है
मम्मी
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लोड खड़े से देखना रहा वो भी आपने ये दे रही मैं आपने लगाऊंगी यही रो हार्ट विच पर डिस्ट तो ये जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा प्रभु अनम्यूट करो। हेलो हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनम्यूट कीजिए। हरि बोल। हरे कृष्णा अनम्यूट कीजिए भाई। हरे कृष्णा थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा ये कोई विशेष कृष्ण बलराम का अरेंजमेंट है कि रोज इसी समय पे इंटरनेट बंद करने का उन्होंने प्रोग्राम बना रखा है। सो जगन्नाथ जी के हरे कृष्णा सो जगन्नाथ जी का जब लक्ष्मी से ये समाचार सुना तो धर्मराज ने पूछा यमराज ने फिर मेरी क्या सेवा है तो यहां सब कुछ ऐसे होगा तो इसका महात्म सुनाइए। तो लक्ष्मी देवी ने मार्कंडेय ऋषि की कथा बताई। एक मार्कंडेश्वर महादेव जगन्नाथपुरी में मंदिर है। मार्कंडेय ऋषि सात ब्रह्मा जी के दिन तक सात कल्प तक उसकी लंबी आयु। लक्ष्मी देवी कहती है कि प्रलय के समय यहां मार्कंडेय ऋषि तैरते हुए आए तो उस समय कहा कि ये जो वट वृक्ष है इसके ऊपर पत्ते में भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है और उसके मुख में जाके सुख से रहो और फिर आपको कोई प्रलय का दुख नहीं होगा। और ऊपर चढ़ के वट वृक्ष में गया। मार्कंडेय ने देखा वटस्य पत्रस्य पुटे श्यानम बालम मुकंदम मनसा स्मरामी। और मार्कंडेय जी वहां रहे कि भगवान ये आपके धाम में मेरे को निवास दीजिए। तो मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने कहा यहां प्रलय के उपरांत आप मार्कंडेश्वर महादेव जो मंदिर बनेगा हमारा यहाँ भक्त है उसके वहाँ आप विराजमान होना। तो ये कथा भगवान जगन्नाथ के स्वरूप की और भगवान जगन्नाथ के इस पुरी धाम में प्रकट होने की। अब एक गीता पंडा की कथा आप जगन्नाथ जी की आपको सुनाते हैं और फिर आज की कथा को विराम देंगे। एक गीता पंडा, उसका नाम गीता पंडा तो नहीं था, नाम तो मिश्रा जी था, ये बहुत बड़ा भक्तवत्सल भगवान। उस पंडित जी का रोज का नेम ये था कि गीता का पूरा पाठ करके भगवान को सुनाते थे, पूरा गीता का पाठ रोज भगवान को सुनाते थे, और इतना विश्वास था कि भगवान जो कुछ भी, अर्जुन मिश्रा उनका नाम था, वैसे अर्जुन आचार्य कभी कहते हैं कुछ कथाओं में अर्जुन मिश्रा, तो उसके नाम प्रसिद्ध हो गया गीता पंडा। वो ऐसा महात्मा था जो कभी किसी के घर मांगने नहीं जाता था, अयाचक ब्राह्मण था। ब्राह्मण अयाचक वो होता है जो किसी से मांगने नहीं जाता, जो भगवान की इच्छा से आ जाए उसको पाले। जैसे हमारे माधवेंद्रपुरी अयाचक साधु थे, किसी के घर मांगने नहीं जाते थे, और जब वो गोवर्धन में गोविंद कुंड के पास बैठे थे, कहीं मांगने नहीं गए, तो भगवान श्री कृष्ण उनके पास दूध लेके स्वयं आ गए। सुधामा अयाचक ब्राह्मण था, कभी किसी के घर मांगने नहीं जाता था, जो भगवान की इच्छा से मिलता था उसी में निर्वाह करता था। भगवान के पास अपनी पत्नी के कहने के ऊपर गया भी तो कभी मांगा नहीं भगवान से, भगवान को मांगना पड़ गया कि कुछ मेरे लिए मित्र उपहार लाए हो, भेंट लाए हो, उज्जैन के सहपाठी हो, मेरे साथ पढ़े थे, मेरे लिए भेंट कुछ लाए हो क्या। सुधामा ने नहीं मांगा, कृष्ण ने मांगा। तो ऐसे जो अयाचक ब्राह्मण होते हैं, किसी से नहीं मांगते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, उनकी देखभाल भगवान स्वयं करते। सो ये अर्जुन मिश्रा जी ये गीता का पाठ करके ही भगवान को सुनाते थे, 1 2 3 गीता का पाठ ही चलता रहता था। पत्नी कहती थी घर में बच्चे हैं महाराज, खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था तो करो। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण देंगे, जो देंगे हमारे जगन्नाथ बैठे हैं, जगत को दे रहे हैं तो हमको क्यों नहीं देंगे। ऐसे श्रीवास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने एक बार पूछा कि आप गृहस्थी हो, कुछ काम धंधा करते नहीं हो, घर का निर्वाह कैसे चलेगा। श्रीवास पंडित कहता है भगवान सबको देता है, चुंटी को 1 दाना देता है, हाथी को 40 किलो दे देता है, न कोई नौकरी करने जाता है, न कहीं फैक्ट्री में जाता है, तो मैं हरी कथा करूंगा, मेरे को खाने को नहीं मिलेगा। बोला नहीं मिला तो, बोला मैं ताली बजा के कहूंगा गोविंद गोविंद, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उपवास कर लूंगा। बोला दूसरे दिन नहीं आया तो, बोला नहीं आया दूसरे दिन तो उपवास करूंगा, गंगा जल पी लूंगा। बोला तीसरे दिन नहीं मिला तो, बोला फिर गंगा में अपने आप को प्रवेश करके कहूंगा भगवान आपका, आपके पास आ रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा कर दी, सुनो श्रीवास ये असंभव है, परंतु लक्ष्मी कभी भिखारी बने तो बन सकती है, पर तेरे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये आश्वासन होना चाहिए सारे भक्तों को कि भगवान भक्त की आवश्यकता को पूरा करते हैं। और गीता पंडा की पत्नी ने जब कहा, नाम तो अर्जुन मिश्रा था, नाम गीता पंडा के नाम से प्रसिद्ध हो गया, पत्नी ने कहा अब खाएंगे कहां से, बच्चे भूखे बैठे हैं, तो गीता पंडा भगवत गीता खोल के दिखाता है, बता दोस्त देखो, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा है जो मेरा सुमरण करता है नित्य, उसके लिए मैं योग क्षेम का सारा प्रबंध करता हूं, उसकी कमी को पूरा करता हूं, और जो उसके पास है उसको बचा के रखता हूं, सुरक्षा करता हूं। योग का एक अर्थ है मेरी प्राप्ति में जो आवश्यक है वो मैं पूरा करता हूं, और जो रुकावट है उसको हटा देता हूं क्षेम। परंतु सामान्य उसके जीवन की आजीविका की सारी जरूरत पूरी करता हूं, और जो उसके पास है भक्ति मेरी उसको सुरक्षित रखता हूं। पंडितानी को लगा कि ये पंडित जी पुस्तक के शब्दों के ऊपर इतना विश्वास करता है, बच्चे भूखे बैठे हैं, उसको आया क्रोध। उसने इस श्लोक के अंदर जहां वहां में शब्द है ना, उसके ऊपर 3 लकीरें लगा दी कि ये का वहां में क्या कंधे के ऊपर उठा के लाएगा? भगवान के ऊपर भरोसे बैठा है, रात को सो गए भूखे, सुबह सवेरे 4 बजे दरवाजा खटका, पंडितानी ने जाके देखा, दो सुंदर बालक हैं, एक सांवला है एक गोरा है, कंधे के ऊपर सामग्री उठाई है, दूध है दही है आटा है चीनी है चावल है सब्जियां हैं। पंडित जी आपके घर में ये प्रेम पूर्वक भेजा गया है, आप इसको स्वीकार कीजिए। पंडितानी को आश्चर्य लगा, सुबह सुबह इतना सारा भंडार भोजन का भगवान के भोग के लिए किसने भेजा है? सामान उतारा, का बेटा आप बैठो, बड़े सुंदर लग रहे हो, मैं भोजन बनाती हूं, आप भोजन करके जाना बेटा। तो सांवले वाला लड़का कहने लगा, मैं खा नहीं सकता हूं, मेरी जीभा जल गई है, मेरी जबान के ऊपर घाव पड़ा है, और वो चले गए। पंडित को सारा समाचार पंडितानी ने बताया, कैसे सुबह किसी यजमान ने इतनी सारी भोजन की सामग्री भेजी है, और जाके देखा, पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए, कौन इतना भेजता है, कौन लाया था? तो दो बालक बड़े सुंदर थे, सांवला और गोरा, सफेद दूध के फैन जैसा था। बोलो, फिर आपने उनको अतिथि सत्कार के लिए बिठाया नहीं, भोजन खिलाने के लिए नहीं कहा? बोला, मैंने विनती की कि मैं भोजन बनाती हूँ, बालक को प्रेम से बैठो पाके जाना, लेकिन सांवला कहना लगा कि मेरे जमी है, मेरी जबान कटी हुई है, जख्म हो गए हैं, उसके ऊपर घाव हो गए हैं, मैं खा नहीं सकता। पंडा को समाज में आ गया कि ये तो गड़बड़ है, जबान कैसे बच्चे की कटी हुई है और 3 जगह पे कटी हुई है। वो गीता के उस श्लोक को जाके देखा पंडित जी ने, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्यते तेषां तभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। 3 निशान लगे हुए थे पंडितानी की तरफ से, और 3ों निशान मिट गए। पंडित जी कहते हैं, पंडितानी, भगवान के मुख की वाणी है ये भगवत गीता, मुख पदमा, भगवान के मुख पदम से ये वाणी निकली है। आपने भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं किया, भगवान की जीभा के ऊपर आपके काटने का निशान आ गया, फिर भी बड़ी भाग्यशालिनी हो पंडितानी, आपको तो भगवान का दर्शन हुआ। भगवान जगन्नाथपुरी में कहते हैं कि भगवान किसी को भूखा नहीं रखते, कोई भूखा नहीं रहता। मेरे को बात याद आती है कि एक और ऐसा भगवान ना गोपाल का मंदिर है, श्री नाथ जी गोपाल, क्या नाम है, श्री नाथ जी गोपाल, ये नाथ जी गोपाल भगवान गोवर्धनधारी का नाम है, उल्टा हाथ ऊपर है सीधा हाथ कमर पे है, गोवर्धन धारण करने वाले का। उस मंदिर का नेम ये है कि लोग बाहर से दूध सब्जियां फल ये ले जाकर अर्पण करेंगे और रसोइये उसको बनाएंगे प्रसाद, फिर जो पंडित हैं उनको प्रसाद मिलता है उनकी सेवा के बदले, वो बेचते हैं बाहर प्रसाद को कुछ पैसे लेके, और लोग प्रसाद वहां से लेके खाते हैं। कुछ हमारे ब्रज के बरसाना के भक्त, नंदगांव के भक्त चले गए ना दर्शन करने नाथ द्वारे का। अब भक्त साधु संत थे, जितने 50-100 रुपये किराए के थे वो दे के वहां पहुंचे, वापसी के किराए के पैसे बचे हुए थे। साधु संत तो जो भगवान देता है वो खाते हैं, पैसे को लेके खाते नहीं। अब वहां बाहर निकले, भूख लगी, बोला कुछ प्रसाद दो, बोला पैसे दो। अरे पैसे दो, पैसे तो है नहीं। तो सीधे बाहर खड़े होके कहते हैं, गोपाल तेरे यहां पैसे से प्रसाद मिलता है क्या? इससे तो राधा रानी कृपालु है, बरसाने में आज तक ब्रज में कोई भूखा नहीं सोया, और सचपच आज ब्रज में किसी साधु को ऐसा नहीं है जो भीखा सोया हो, सबको ब्रज में भोजन मिलता है। अरे आपके पास आए हैं और भूखे जाएंगे यहां से ब्रज में, रखो तेरा ये बड़ा सोने की चक्की से पे, जो वहां सोने की चक्की है, सोने की और चांदी की चक्की है जिससे केसर पीसते हैं, और घी का कुआं है। बोला तेरे का घी का कुआं तेरे पास रखो, तेरी सोने की चक्की तेरे पास रखो, हमारा बरसाना और ब्रज अच्छा है जहां सबको रोटी दूध दही मिलता है। ये भगवान से रूठ के जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पर भगवान तो वही है कृष्ण, कोई दो तो है नहीं, वही ब्रज का है, वही नाथ द्वारे में माधवेंद्र द्वार, माधवेंद्र पुरी के द्वारा प्रकट किए हुए भगवान है। सो एक पंडित को कहा जाओ हमारे भक्त आए हैं उनको ये पूरा बड़ा टोकरा भर के प्रसाद जाके दे के आओ, पंडित जी प्रसाद लेके आ रहा है। बोला कौन भक्त आए हैं ब्रज से बरसाने वाले नंदगांव वाले? बोला क्या है? बोला ये प्रसाद। बोला पैसे नहीं है? बोला पैसे नहीं, गोपाल ने भेजा है। बोला इतना प्रसाद लाके दिया, हमने खाया ये दो दिन खाया और बचा हम बरसाने लाए, हम दूसरे दिन दर्शन करने गए। बोला गोपाल तुम्हारे को ऐसे खरी खोटी सुन के फिर प्रसाद खिलाना था तो पहले क्यों नहीं कहा? तो भगवान को भी कभी कभी अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुन सुन के थक जाते हैं, कान पक जाते हैं, वो प्रेमी भक्तों से कुछ डांट डपट सुनने में मजा लेते हैं। तो आज के दिन जगन्नाथ जी को लक्ष्मी जी आके डांटती है, क्यों घर से चले गए, क्यों अभी तक नहीं आए? भगवान को बहुत मजा आता है। तो भक्तों के द्वारा भगवान, ये चेतना चरिता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये वेद की स्तुति करने वाले मुझे प्रभावित नहीं करते हैं, परंतु जब मेरी भर्सना करते हैं, माँ मेरा कान पकड़ के बांधती है, गोपियां मेरी भर्सना करती है, उससे मैं बड़ा आनंदित होता हूं। तो भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, आप सबकी भक्ति भगवान जगन्नाथ कृष्ण प्रेम को बढ़ाए। इन शब्दों के साथ आज कथा को विराम देते हैं, कल फिर 4 बजे कथा का शुभारंभ करेंगे। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण। कोई विशेष कोई विशेष लीला आपको भी जगन्नाथ जी की सुनने की इच्छा है तो बताइए, कल उसको देखें, उसको कथा करें। ये सामान्य कथाएं तो हो गई, अब है भक्तों के साथ भगवान की लीला की कथाएं, ये कल 2-3 दिन और करेंगे। हाँ, क्या प्रश्न है प्रभु? गोकुलेश्वर दास बोलिए। हरे कृष्णा।
ये भक्तों का प्रश्न है, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये इन्फॉर्म करना।
अच्छा, चैट बॉक्स में लिखें, ये तो चाट खाने वाले होंगे तो नहीं लिखेंगे। हरे कृष्णा। सुभद्रा देवी दासी बोलो। श्रीवास पंडित कहता है भगवान सबको देता है, मेरे को भी देगा, उसमें क्या है? श्रीवास तो हो गए चेतना महाप्रभु के पार्षद, उसको तो एक बच्चा था, वो भी हमारा कीर्तन में चला गया। अरे हमारे पास 6-6 बच्चे, हम 8 हैं, आज तक भगवान खिला रहा है, कभी कमी नहीं हुई है कुछ, हम भी कुछ नहीं करते हैं, बैठे हरि कथा कर रहे हैं फिर भी चल रहा है काम, तो ये पुरानी बात नहीं है, ये आज भी सत्य है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय, अवंती का भक्त वृंद की जय, श्री भक्ति चारु स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। चलो ये रोज रो, ये ड्रामे रो, इलाज की करे कोई को नहीं,
कुछ हो या कुछ सेटिंग हुए थी आईटी वाला घर ना हो तो,
हाँ
आईटी वाला घर से ना हो सिर्फ
बोले कहो तो काल में रोज है मीठा प्रॉब्लम में की करा।
ये घंटा में आप बंद भेजा है बस है ऑफिस में भी सिस्टम होता है। पहले जग आयो आप पहले नाथ आयो मां पहले जगत आयो या पहले नाथ आयो शिव जी वाला तो कहीं ना जगन में भी नाथ लगल है अच्छा नाथ पंथ रो श्री में भी नाथ लगल है भोलेनाथ जगन्नाथ
ती फोन ना कित ले घूमे थोड़ो वधिक ये में हल्यो ही तू किथे मुई तो हल्यो को ना 1.7 बताया था तू कित कोई हल्यो ये फोन ना करे
बे घूमे ते आउनो बस स्कूटी ते चक्कर काटे आपरो हवा खाए
बस स्कूटी तो ये हल्ला दिखाड़े को नहीं तो
पैदल मले को ना
पैदल किंग ताले ही तो हूँ वाले को ना 1.7 हले वांगी
तो पैदल वाले ना हूँ आगे हले जाओगे
नहीं 1.7 मैं 1.2 ताले से बुरा 1.1 ताले से बुरा होता हूँ
400 मीटर की ताले
ना हूँ से बुरा इतना तो हलना बहुत है मेरे को पैदल की तो नहीं मैं